बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने लास्ट सेशन में, बिफोर वी टुक अ ब्रेक लास्ट वीक, हमने वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ अ पर्सन प्रोग्रेसेस ओवर टाइम। अपनी जिंदगी में हमारी जो प्रोग्रेशन होती है, फ्रॉम एक रीजन होता है हमारा मोटिव काम करने का, उससे उठ के फिर हम एक दूसरे और फिर एक तीसरे रीजन पे आते हैं। और मैंने ये भी गुजारिश की थी कि ये इससे आगे भी है एक स्टेज, लेकिन वो मोटिव नहीं चेंज होता इतना जितना वो अंडरस्टैंडिंग दूसरों के हवाले से चेंज होती है उसमें। हम जिस वक्त प्रिंसिपल सेंटर्ड होते हैं, ये जो तीसरी स्टेज हमने उस वक्त देखी थी, तो उस मौके पर हम जनरली जब अपने प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे होते हैं, तो जो उन प्रिंसिपल्स को नहीं समझता उसके बारे में हमारी एक राय और एक जजमेंट पैदा होनी शुरू हो जाती है कि ये ठीक नहीं कहता। जो इससे अगली स्टेज है, उसमें असल में ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम उसकी भी कंस्ट्रक्शन को समझें। ये एक अलग मौजू है पूरे का पूरा। कंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है, इसको हम थोड़ा सा आज जेरे बहस भी लाएंगे इनशाला इस आज के सेशन में। आज जो हम इस सिलसिले में एक अगली बात करने लगे हैं, वो ये है कि फेथ, हमारा जो फेथ है वो कैसे हमारे पास हमें मोटिव प्रोवाइड करता है टू डू द राइट थिंग। मैं आपसे ये शेयर करता हूँ जी, पहले जस्ट सो दैट यू हैव सम रेफरेंस पॉइंट्स। हमारा फेथ कैसे हमको इट प्रोवाइड अस मोटिव टू डू द राइट थिंग, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हम जो आज गुफ्तगू करेंगे वो प्राइमरीली फेथ से रिलेटेड एक जनरल बातचीत मैं आपके साथ करूंगा। इसके बाद आई विल टॉक अबाउट, ब्रीफली आई विल टॉक अबाउट मुस्लिम फेथ, और मुस्लिम फेथ में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जैसा कि आप जानते हैं, वो खुदा के ऊपर ईमान, क्योंकि बाकी सारे ईमानियात के जो एस्पेक्ट्स हैं वो असल में इसी से निकलते हैं। तो वंस वी हैव कंप्लीटेड दैट, तो आई विल एंड टूडेज सेशन विद अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर यू। आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैं चाहूंगा कि आप इस पे गौर करके नेक्स्ट टाइम आए, और फिर जब मैं आपके साथ अपनी कंस्ट्रक्शन को शेयर करूंगा तो उस पर आपको एक अच्छी गुफ्तगू करने का, अपने साथ कंपेयर करने का, उसको देखने का, और इस तरह से मुझे भी लर्निंग में मदद करने का, और आप खुद भी इसमें यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू लर्न। हम शुरू करते हैं जी अल्लाह का नाम लेके। फेथ हैज अ मोटिव, मोटिव टू डू द राइट थिंग, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें जो हम सबसे पहली बात मैं आपके साथ करने लगा हूँ, वो शायद थोड़ी सी अजनबी महसूस हो आपको, वो ये है कि फेथ के बारे में ये समझ लेना कि फेथ असल में होता क्या है। हमारी जो कंस्ट्रक्शन है रियालिटी की, द वे वी आर कंस्ट्रक्टिंग रियालिटी, द वे वी आर मेकिंग मीनिंग ऑफ रियालिटी, ये है असल में हमारा फेथ। हमारा फेथ ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पे लिख के रख दिया है, या हमें वो बचपन में किसी ने बताया था कि ये चीजें मान लो तो उससे वो फेथ डेवलप हो गया। फेथ एक लिविंग रियलिटी है, उसकी रोशनी में आप चीजें अगर नहीं देख रहे हैं तो फिर वो एक लिखी हुई चीज भी हो सकती है, वो एक बोली जाने वाली चीज भी हो सकती है, लेकिन उसका आपकी जिंदगी से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है। टिल द टाइम दैट इट बिकम्स अ लिविंग रियालिटी, फेथ इज डॉर्मेंट इन योर लाइफ। कोई अगर आपसे पूछता है कि आपका मजहब क्या है, तो हो सकता है आप बता भी देते होंगे, इस घर में पैदा हुए हैं आप, इस वजह से आप इसी की ट्रेडिशन में खड़े हैं, लेकिन हाउ आर यू इंटरप्रेटिंग, इसको एक एक दो मिसालों से समझने, यानी थिंक अबाउट सम थिंग्स दैट हैव हैपेंड रिसेंटली, ठीक है जी। हाउ हैव यू कंस्ट्रक्टेड देम, मिसाल के तौर पर किसी ने आपके साथ कोई ज्यादती कर दी है, किसी ने कोई फैसला गलत कर दिया है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको सुपरसीड कर दिया है किसी ने, और बेइंसाफी समझते हैं आप उसको, तो दिस इज, ये कोई भी वाक्य है, कोई अच्छा वाक्य हो गया, समथिंग गुड हैज हैपेंड इन द प्रीवियस फ्यू डेज, तो उसको भी देखिए कि क्या आप उसको कैसे, अगर किसी को बयान करें तो कैसे बयान करेंगे, यानी डज इट हैव अ कंस्ट्रक्शन जो कि आपके फेथ पे असर डाल रही है या फेथ से निकल रही है, या वो कंस्ट्रक्शन फेज से बिल्कुल आ रही है, यानी मिसाल के तौर पर जो भी आपके फेज के एलिमेंट्स हैं वो उस पर कोई असरअंदाज हो रही है। मैंने पिछले दिनों अपने एक दोस्त से बात करते हुए ये कहा था, गुजारिश की थी कि हमको इस पे बहुत गौर करना चाहिए कि कल का दिन, रिसेंट पास्ट, यस्टरडे जो हमने गुजारा है, इसमें क्या चीजें ऐसी हुई हैं कि जो अगर मेरा फेथ ना होता तो डिफरेंट होती। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज नहीं है तो फिर ये समझ लें कि इस वक्त जिंदगी में आपके फेथ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी मेरी जिंदगी में अगर मेरे फेथ के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब ये है कि फिर वो फेथ रिडंडेंट है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर तो वो फर्क सिर्फ इस तरह पड़ रहा है, मिसाल के तौर पर कि मैं मस्जिद चला जाता हूँ या मैं वक्त पे नमाज पढ़ लेता हूँ या अच्छी तरह से एहतियात से नमाज में कोशिश करता हूँ कि तवज्जो रहे, तो असल में वो मेरी जिंदगी से पार्टली रिलेटेड है। कुछ चीजें उससे रिलेटेड हैं, कुछ चीजें फेथ से निकल रही हैं, कुछ चीजें जो है वो फेथ से नहीं निकल रही। सो हाउ इज इट दैट यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर लाइफ? अगर आप अपनी जिंदगी के कल का दिन अगर बयान करें, अपने हाथ से लिखें या उसको किसी से बोल के बयान करें, तो हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट दैट डे इन योर ओन माइंड? ये है जो कि असल में आपका फेथ है प्रैक्टिकली। दिस इज माय ओपिनियन। मैं ये नहीं कह रहा हूं जी कि ये फेथ के बारे में एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है या हम कोई इस तरह की बात कर रहे हो कि हम उसको डेफिनेशन एक यूनिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द वे आई सी इट, एंड इफ इट इज नॉट हैपनिंग दिस वे, तो फिर मैंने जिस तरह अर्थ किया कि फिर ये फेथ असल में एक बोली जाने वाली चीज है। हमें पता है कि अगर आप मेरे से पूछेंगे अभी के मैं कितने खुदा मानता हूँ, तो मुझे मालूम है कि क्या जवाब एक्सपेक्टेड है मेरे से और मुझे क्या जवाब देना चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से जवाब दे दूंगा। और मैं क्या क्या मेरे टेनेट्स ऑफ फेथ क्या क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, बिकॉज आई नो आई हैव ग्रोन अप जनरली विद दिस इन द सेम सोसाइटी एज यू डिड, और हम ये जानते हैं कि यहाँ पर फेथ जो है ये एक इनहेरिटेड रियलिटी के तौर पर ट्रांसमिट होता है। ये बात के उसका जिंदगी से भी कोई ताल्लुक होता है, इस पर हमने बहुत लंबे अरसे तक शायद गौर भी नहीं किया होता। तो मैं असल में ये बात अर्ज कर रहा हूं कि जब आपकी ये रियलिटी की कंस्ट्रक्शन फेथ बनेगी तो फिर ये लाजमन आपके कामों के करने ना करने के ऊपर मोटिवेशन में फर्क डालेगी। ये किस तरह डालती है फर्क? यानी क्या ये इसका मतलब ये है कि मैं अब जो भी अच्छा काम करूंगा वो खुदा के रिवॉर्ड की चाहत में करूंगा या उसकी पनिशमेंट से अवॉइडेंस में करूंगा? ये क्या चीज फर्क डालती है? ये है असल में वो फेथ की एक्सप्लेनेशन। यानी वो जिस तरह का फेथ होगा और जो आपकी कंस्ट्रक्शन पे वो फर्क डाल रहा है, इसी से आपके अंदर वो मोटिवेशन पैदा होती है, दैट वो मोटिवेशन जो कि आपको ठीक या गलत में तमीज करने और उसको अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए एक इंस्पिरेशन देती है। मैं यहाँ पर एक चीज जो चाहता हूं कि हम इसको क्लियरली देखें वो ये है कि देर आर थ्री मेजर पॉसिबल कंस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ इवेंट्स। आपको अगर जिस तरह मैंने गुजारिश की, आप अगर इसको अपनी अपनी कोई डायरी लिखते हुए अपने किसी लाइफ इंसिडेंट को, लाइफ इवेंट को बयान करेंगे तो उसके तीन पॉसिबल कंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जी। एक कंस्ट्रक्शन जो है वो है गॉडलेस रैंडम कंस्ट्रक्शन, यानी जिसमें कि अल्लाह ताला या खुदा एक एक कंट्रोलिंग एक एक क्रिएटर की हस्ती कोई रोल प्ले नहीं कर रही। ठीक है जी, ये दुनिया शायद आपसे आप वजूद में आ गई है, इसके अंदर होने वाली चीजें आपसे आप हो रही हैं, इसमें कोई पर्पस नहीं होता। ये इसको बयान भी किया जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ हमारे आसपास, इसमें ना तो पर्पस ढूंढने की जरूरत है ना पर्पस को कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, ये बस रैंडम है चीजें। जिस तरह से मतलब जो समझ लें कि रेत उड़ी है तो कोई रेत का जर्रा कहीं पे टकरा गया और कहीं पे दूसरा टकरा गया, ये जिस तरह से वो रैंडम है, इसी तरह से जिंदगी में होने वाले सारे वाकयात रैंडम है। तो एक कंस्ट्रक्शन तो ये है। दूसरी कंस्ट्रक्शन इस सिलसिले में जो की जाती है आमतौर पर, वो आप इससे शायद अपने इर्द गिर्द देख सकेंगे कि बहुत ज्यादा आम है, ये भी रैंडम कंस्ट्रक्शन है लेकिन इसमें गॉड एज अ क्रिएटर माना जाता है। ठीक है जी, वी डू एग्री यानी मिसाल के तौर पर हम बाज जिंदगी के वाकयात में, बाज जिंदगी के मामलात में खुदा को एक्टिव भी देखते हैं। अगर कुछ फौत हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि ये अल्लाह के पास चला गया, समझते हैं, और फिर उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं कि अब वो फौत हो गया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अल्लाह के पास चला गया तो ये कर सकते हैं। इसमें हम इस दुनिया, इस पूरी जिंदगी का आगाज जो है उसको खुदा से मानते हैं। ये जो दूसरी पॉसिबल कंस्ट्रक्शन है, इसमें हम ये मानते हैं कि ये जो पूरी की पूरी कायनात है ये एक खालिक ने तखलीक की है। पहली में असल में हम इसके बारे में भी कोई यकीनी बात नहीं करते, हम समझते हैं कि बस ये हमेशा से थी, हमेशा शायद रहेगी, यहाँ पे होने वाले वाकयात रैंडमली हो रहे हैं। ये जो दूसरा एस्पेक्ट है कि वाकयात रैंडम हो रहे हैं, ये दूसरी इस पॉसिबल कंस्ट्रक्शन में भी पाया जाता है कि वाकयात तो रैंडम है, यानी किसी ने अगर ज्यादती कर दी है तो वो सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसके पास मौका था मेरे साथ ज्यादती करने का, और मेरे साथ ज्यादती हो गई है। अब मैं अगर मुझे मौका मिलता है तो आई कैन गेट बैक एट हिम और आई कैन गेट इवन विद हिम, मैं उससे बातचीत कर सकता हूँ, उसको उसको उससे बदला ले सकता हूँ, ये सब कुछ कर सकता हूँ। यानी ये क्योंकि जिंदगी में असल में जो कुछ हो रहा है वो मेरे साथ या तो एनवायरनमेंट कुछ कर रही है और या मैं एनवायरनमेंट के साथ कुछ कर रहा हूँ। कुछ चीजें मेरे करने का कॉन्सिक्वेंस भी हो सकती हैं जो कि नेचुरल प्रोसेसेस में हो जाते हैं, लेकिन ये बात कि ओवरऑल कोई इसका मकसद है, ओवरऑल कोई इसका पर्पस है, कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई विजडम के साथ इसको चला रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग। और तीसरी कंस्ट्रक्शन वो है कि जिसको मैं इन अल्फाज में बयान करता हूं कि ये एक पर्पजफुल कंस्ट्रक्शन विद गॉड एज द एक्टिव कंट्रोलर। पर्पजफुल कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, यानी मेरे साथ अगर कुछ हो रहा है तो उसमें भी किसी के साथ कुछ हो रहा है, कोई अगर तकलीफ में है, कोई खुशी में है, कोई खुशहाल है, किसी में मुश्किल पड़ गई है, तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये असल में खुदा की तरफ से एक पर्पजफुल इवेंट हो रहा है और खुदा उसको कंट्रोल करता है। ये जो एस्पेक्ट है, मैं चूंकि जाहिर है कि आप ये समझ ही सकते हैं कि मैं इस तीसरी कंस्ट्रक्शन को मानता हूं, और मेरा ये ख्याल है कि अगरचे ऐसा पॉसिबल है कि ये वीडियो देखने वाले लोग जब ये रिकॉर्ड भी हो जाए जो मौजूद हैं उनमें से बाज लोग, ऐसा हो सकता है कि आप में से बाज लोगों की ये राय हो दूसरे लेवल पे। यानी हम इस, और ये क्यों होता है, क्योंकि बिलअमूम हम इसके बारे में कॉन्शियस नहीं होते। जिंदगी में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं हम उनकी इवेंट्स में जो सोर्स बन रही होती है उधर तक रुक जाते हैं। सोर्स से मेरी मुराद है कि अगर किसी शख्स ने, जब अभी हमने मिसाल दी, आपको अगर ऑर्गेनाइजेशनली सुपरसीड कर दिया गया है तो आप उस ज्यादती की सोर्स जो है वो अपने बॉस को समझ सकते हैं और इधर बात खत्म कर सकते हैं। और ये क्यों हुआ है आपके साथ, इसकी कोई वजह होनी जरूरी नहीं, ठीक है जी। ये रैंडम कंस्ट्रक्शन है विद गॉड एज द क्रिएटर, लेकिन पर्पजफुल कंस्ट्रक्शन ये है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसमें खुदा का हाथ है, ठीक है जी। नाउ आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल एट दिस टाइम, क्योंकि ये जाहिर है कि मैं चाहता हूं कि इसी सवाल पर हम एंड करें इस गुफ्तगू को जो आज हम मुख्तसर से करेंगे, और मैं अगले हफ्ते फिर आपको अपनी जो कंस्ट्रक्शन है वो आपके क्रिटिकल एनालिसिस के लिए प्रेजेंट भी कर दूंगा कि मैं इसको किस तरह से देखता हूँ। और इसमें मैं बहुत ज्यादा चाहूंगा कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और जो आपके सवालात हों वो सामने भी रखें, जो एतराजात हों वो भी सामने रखें। ये पर्पजफुल कंस्ट्रक्शन विद गॉड एज द एक्टिव कंट्रोलर जो है, अगर इसको समझना है तो फिर हमको चंद चीजें खुदा के बारे में भी समझ लेनी चाहिए। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, मैं यहाँ पे कोई मजहब पे लेक्चर नहीं दूंगा, लेकिन खुदा के बारे में कुछ चीजें जो हैं वो जो मुस्लिम फेथ का हिस्सा है, मुस्लिम फेथ का हिस्सा कह लें, अक्सर चीजें इनमें यूनिवर्सल भी हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल चूंकि मैंने इसको जिस जगह से डिराइव किया है वो मुस्लिम फेथ के अंदर कुरान मजीद है, जिसको कि हम अल्लाह की किताब समझते हैं, इस वजह से मैं इसको मुस्लिम फेथ का हिस्सा समझता हूँ या इस्लामिक फेथ का हिस्सा समझता हूँ। ये जो इसका बेसिक टेनेट जो है इस्लामिक फेथ का, वो जाहिर है कि फेथ इन गॉड है, एंड एवरीथिंग एल्स जो हमें मानने को कहा जाता है वो असल में खुदा से रिलेटेड है। यानी पैगंबरों पर ईमान या आखरत पर ईमान या किताबों पर ईमान, ये सारी चीजें जो होंगी अब खुदा से रिलेट करती जाएंगी। तो बेसिक जो टेनेट है वो तो खुदा पर ईमान है। तो खुदा पर ईमान के हवाले से चंद चीजें आपसे मैं आज गुजारिश करूंगा और इसके बाद एक सवाल पे इसका खात्मा करूंगा। जो यहाँ पर जो असल चीज है वो ये कि हमारे पास जो खुदा का तारुफ है वो एट्रीब्यूटिव है, यानी क्वालिटेटिव तारुफ है जी। सबसे पहली चीज ये कि वी डू नॉट हैव अ फिजिकल इंट्रोडक्शन टू गॉड, हमें खुदा के बारे में कोई फिजिकल इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया। खुदा किस मटेरियल का बना हुआ है या किस तरह से बना हुआ है ये नहीं बताया गया, और बना हुआ है खुद यही बात जो है ये असल में खुदा के उस पूरे कॉन्सेप्ट को वो नफी कर देती है। दूसरी बात ये कि वी आर टोल्ड दैट गॉड इज अनलाइक एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज उस जैसी नहीं है। देयरफॉर वी कैन नॉट ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड गॉड्स फिजिकल क्वालिटीज इवन थ्रू एनालॉजी, यानी हम एनालॉजी ड्रॉ भी नहीं कर सकते किसी चीज के बारे में, बिकॉज कुरान मजीद दो टोक अल्फाज में ये कहता है कि लैसा कमिस्ले ही शय, उस जैसी कोई चीज है ही नहीं, यानी उससे मिलती जुलती भी कोई चीज नहीं। ये जो एस्पेक्ट है इसको सामने रखते हुए, यानी इसको यूं समझ लें, एक छोटी सी मिसाल से मैं चाहूंगा कि आप पर ये बात ज्यादा क्लियर हो जाए। यानी इंसान के पास चीजों को इमेजिन करने के भी कुछ रास्ते हैं। हमने हो सकता है एक चीज ना देखी हो, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए, मैं उसकी आमतौर पे मिसाल देता हूँ अपने सुनने वालों को, अबाउट अ यूनिकॉर्न। ठीक है जी, यूनिकॉर्न जो है ये एक इमेजिनरी जानवर है कि जिसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो एनालॉजी के जरिए से करते हैं। हमारे पास चीजों को समझने के, चीजों का इमेज क्रिएट करने के दो क्लियर जराए हैं। एक ये है कि चीजें हमारी सेंसेस में आ जाएं और फिर हम उनका इमेज अपने जहन में स्टोर कर लें, और एक दूसरा तरीका ये है कि कोई चीज हमने आज तक देखी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये एक्सप्लेन किया जाए, आपकी देखी हुई चीजों के हवाले से एक्सप्लेन किया जाए, तो असल में वो एनालॉजी के थ्रू भी आप एक चीज को इमेजिन कर सकते हैं। ये इस तरह से होता है, मिसाल के तौर पर, कि अगर कोई आपको ये एक्सप्लेन करना चाहे कि यूनिकॉर्न क्या होता है, तो वो आपको इस तरह एक्सप्लेन करेगा कि एक घोड़ा नुमा या गधा नुमा एक जानवर है कि जिसके सर पे एक सींग है और उसके पर भी होते हैं। देखिए अब क्या किया है, आप गधा या घोड़ा इसको जानते हैं, जानवर को जानते हैं, आप सींग को जानते हैं, आप परों को जानते हैं। इसके बाद अब आपके जहन में एक क्लियर पिक्चर बन सकती है उसकी, कि जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो हम कई दफा चीजों को एनालॉजी से भी समझ सकते हैं, चीजों जो हमने अपनी सेंसेस में हमने चीजें देखी हुई हैं उनको किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करके भी समझ सकते हैं, ये थ्रू एनालॉजी। और चूंकि खुदा से मिलती जुलती भी कोई चीज यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम खुदा को एनालॉजी के साथ भी नहीं समझ सकते, यानी देर इज नथिंग जिसके ऊपर एनालॉजी ड्रॉ की जाए। तीसरी चीज ये कि द कुरान गिव्स एन एट्रीब्यूटिव इंट्रोडक्शन टू गॉड, कुराने मजीद में जो खुदा का तारुफ कराया गया है वो प्योरली एट्रीब्यूटिव है। ठीक है जी, और इसका नतीजा ये है कि आवर रिलेशनशिप विद गॉड एंड देयर फॉर आवर कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी विल बी बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एट्रीब्यूटिव इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड। यानी हमारा जो कुछ भी रिलेशनशिप बनेगा, हमारा हमारी जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन बनेगी रियलिटी की, वो अब असल में जरूरी है कि उन एट्रीब्यूट्स की रोशनी में बनेगी। यानी जो कुराने मजीद में या जो आसमानी सहायफ में जो एट्रीब्यूट्स बयान हुए हैं, जो कि समझे भी जा सकते हैं, यानी वो वाले एट्रीब्यूट्स हैं, अगर वो बेसिक एट्रीब्यूट्स को ले लिया जाए जिनका मैं अभी आपका तारुफ करा देता हूँ, तो ये वो वाले एट्रीब्यूट्स हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि अगर कोई खुदा हो तो उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ठीक है जी, वो एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? दीज आर फाइव बेसिक एट्रीब्यूट्स। द मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड इंट्रोड्यूस्ड बाय द कुरान आर मर्सी, विजडम, जस्टिस एंड ओमनिशियंस एंड ओमनिपोटेंस। ये एंड गलत लग गया जी, इसको मैं ठीक कर लूंगा। मर्सी, विजडम, जस्टिस, ओमनिशियंस एंड ओमनिपोटेंस। ये जो मर्सी है ये आप समझते हैं रहमत, विजडम आप समझती हैं, हिकमत, जस्टिस, अदल. ओमनिसियंस का मतलब होता है नोइंग एवरीथिंग, हु नोज एवरीथिंग. अ पर्सन इज ओमनिसियंट, जिससे कोई चीज भी छुपी हुई नहीं है, जो हर चीज जानता है, छुपी हुई जाहिर हर चीज से वाकिफ है. और ओमनिपोटेंस का मतलब यह है कि वो हर उस चीज पर कुदरत रखता है जिसको वो करने का फैसला कर ले. ये मैंने जो इसमें क्वालिफिकेशन लगाई है, ये जरूरी है जी. यानी वो वही बात करने का फैसला करता है जो उसकी मर्सी, विजडम, जस्टिस, ओमनिसियंस के मुताबिक होती है. और जब वो फैसला कर लेता है तो वो कर सकता है, उसके आगे कोई रुकावट नहीं होती. ये इम्पोर्टेंट है. यानी इससे वो जो सवालात बाज किए जाते हैं कि क्या अल्लाह ताला अपने जैसा एक और खालिक बना सकता है, तो अगर उसकी मर्सी, विजडम, जस्टिस और ओमनिसियंस का तकाजा होगा कि ये बनाना चाहिए, तो बना देगा. यानी अल्लाह ताला की ओमनिपोटेंस ये नहीं है कि अल्लाह ताला बस बेधड़क हर काम बगैर सोचे समझे कर सकता है. नहीं, ये मतलब नहीं है. अल्लाह ताला की ये सारी सिफात बयक वक्त पाई जाती है. एंड ऑल दीज वर्क टुगेदर, ये इम्पोर्टेंट है जी. ये जो एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे बिल्कुल ब्रीफली बयान किया, और ये जो पूरी बात आपके साथ गई, अब मेरी जो कंस्ट्रक्शन जिंदगी की बनेगी, वट एवर कंस्ट्रक्शन दैट आई हैव ऑफ माई लाइफ, ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड मी, विद मी, अराउंड मी, एवरीथिंग, उसके बारे में जब ये कंस्ट्रक्शन के ये एट्रीब्यूट्स मैं सामने रख लूंगा, तो असल में वो कंस्ट्रक्शन होगी जिसको मैं कह रहा हूं कि वो फेथ है आपका. वेन यू रिमेंबर दीज एट्रीब्यूटिव इंट्रोडक्शंस जो अल्लाह ताला के करवाए हैं कुरान मजीद में, और मैं जब ये कहता हूँ जी ये बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं, तो जनरली तमाम एट्रीब्यूट्स अगर आप गौर कीजिएगा वो इनके तहत ग्रुप किए जा सकते हैं. ठीक है जी, कि अल्लाह ताला जब मामला करते हैं तो इन पांच बेसिक एट्रीब्यूट्स के तहत हो रहा होता है वो मामला. और बाकी एट्रीब्यूट्स भी जो अल्लाह ताला के बयान हुए हैं, जो 99 नाम है, वो अगर आप देखें तो जनरली, आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज इसमें आ जाती है, और बाज उनमें से ठीक भी नहीं है कि उनको लिया जाए. अल्लाह ताला के 99 नेम्स जिनको कहा जाता है, वो असल में सारे के सारे कुरान मजीद में मुतारिफ कराए भी नहीं गए, तो वर्ब्स के तौर पर आए हैं, लेकिन उससे हमने सिफाती नाम निकाल लिए हैं. ये एक टेक्निकल इशू है, इसके ऊपर हम अगर चाहेंगे तो आप बात कर सकते हैं. ये पांच एट्रीब्यूट्स जो हैं, इनके तहत हम बाकी चीजें ग्रुप कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला गफूर है, माफ करने वाला है, ये मर्सी के तहत और जस्टिस के तहत, दोनों में अगर जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो लाया जा सकता है. इसी तरह अल्लाह ताला जब मामला करते हैं तो लोगों को उठाते भी हैं और लोगों को पस्ती में भी मुब्तला करते हैं. ये उनकी विजडम और जस्टिस का तकाजा हो सकता है जी. दिस इज, ये कोई अलग से एट्रीब्यूट एज सच नहीं है. अल्लाह ताला कंट्रोल रखते हैं, हर चीज पर कंट्रोल रखते हैं, ये उनकी ओमनिपोटेंस है. ठीक है जी. सो दिस इज व्हाट ये हमारा एक बेसिक तारुफ है अल्लाह ताला की जात का. जब आप इसको समझ लें, तो फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है जिसको मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने रखा जाए, और आप इस पर थोड़ा सा सीरियसली वर्किंग करें, यानी मेक इट अ पार्ट ऑफ योर यू नो डिलिबरेशन ड्यूरिंग दिस वीक. आपने कोशिश करनी है आज से, अभी इस क्लास के बाद से, कि जो कुछ हो रहा है उसमें कोशिश करें कि अल्लाह ताला के हाथ को देखने की कोशिश करें. तो फिर आपकी कंस्ट्रक्शन क्या बनती है, ये जो कंस्ट्रक्शन जो बनती है वो मैं असल में आपके साथ शेयर करूंगा. आज की बात सिर्फ इतनी है कि हम इसको समझ लें और अपने जहनों में उस कंस्ट्रक्शन को क्लियर करने की कोशिश करें. ये जरूरी नहीं है कि मेरी और आपकी कंस्ट्रक्शन एक जैसी हो, लेकिन जब वो इस इंफॉर्मेशन पे बेस करेगी तो वो कंस्ट्रक्शन में खुदा शामिल होना शुरू हो जाएगा. और ये है जिसको मैं कह रहा हूं कि फेथ है. और जब मैं आपके साथ अपनी कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट वीक शेयर करूंगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का मतलब ये है कि मैं किस तरह से, हाउ डू आई क्रिएट मीनिंग, मैं उसको क्या मतलब दे रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है उसको क्या मीनिंग दे रहा हूँ. ठीक है जी, दिस इज माई कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी. तो जो जब हम ये शेयर करेंगे नेक्स्ट वीक, तो उससे आपको उसका रिलेशनशिप जो है कि वाई इज फेथ इन माई व्यू वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेटर्स टू लिव अ प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ. ठीक है जी, ये अंदर की आवाज भी है और ये उस परवरदिगार की, उस बनाने वाले, उस खालिक की पहचानने के बाद उसका एक तकाजा भी है कि मैंने उस जिंदगी को गुजारना है कि जो प्रिंसिपल सेंटर्ड हो, ना कि दूसरों की बेसिस पर मैं अपनी जिंदगी को फ्रेम करूंगा। ये आज का हमारा टॉपिक है जी, एंड फ्रॉम हियर ऑन मैं ये चाहूंगा कि आज के लिए यू कैन वी कैन स्टॉप हेयर, बट प्लीज नोट दिस क्वेश्चन डाउन कि आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द लाइट ऑफ दीज फैक्ट्स व्हिच आई हैव जस्ट गिवन यू, आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या बनती है। ठीक है जी, तो हम इधर इसको रोक देते हैं जी। आई वुड होप दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो हम उसको ले लेते हैं पहले। देखिए, वी बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ द इवेंट्स हैपनिंग इन आवर लाइफ व्हेन दे आर हैपनिंग अगेंस्ट आवर लाइकिंग, बट जनरली व्हाट व्हाट हैपेंस इज दैट वी आर नॉट वेरी कॉन्शियस व्हेन थिंग्स आर गोइंग एज वी थॉट दे शुड, एज वी थिंक दे शुड। तो आई थिंक वन ऑफ द देयर देयर बी अ नंबर ऑफ स्किल्स दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द कमिंग डेज। इसमें से एक तो चीजें जो मैं आपके साथ अभी इमीडिएटली शेयर कर सकता हूँ वो ये कि आप जो हमने पिछले दिनों रिफ्लेक्टिव जर्नल देखा था, आप उसके जरिए से यू कैन बिकम मोर कॉन्शियस। अगरचे ये होता रेट्रोस्पेक्टिव है, लेकिन इसका असर आपकी मौजूद की और फ्यूचर की जिंदगी पर होना शुरू हो जाता है। व्हेन यू नो दैट यू हैव टू राइट अबाउट समथिंग, आज जो कुछ हो रहा है उसको, उसके बारे में आपने लिखना है टुनाइट, तो उसके नतीजे में यू बिकम मोर रिसेप्टिव, मोर नोटिसिंग, आप उन चीजों को ज्यादा नोटिस करने लग पड़ेंगे। दूसरी एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जिसको आम तौर पर मुझे नहीं मालूम कि क्यों पूरी तरह समझा नहीं गया, वो है जी मेडिटेशन। मेडिटेशन कैन बी अ वेरी वेरी गुड टूल फॉर बिकमिंग मोर कॉन्शियस। ये क्या समझा नहीं गया, हम मेडिटेशन करते हैं फॉर ऑल द मेनी रीजंस। लोग पीपल आर प्रोपोनेंट्स हैं इस वक्त के मेडिटेशन के जरिए से आप पता नहीं किस किस्म की फोर्सेस से आपका ताल्लुक हो जाता है। आई हैव नो सच डिजायर टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरा कोई ताल्लुक पैदा हो जाए किसी फोर्सेस के साथ या क्या हो जाए। मेरी सिर्फ एक चीज जो मेडिटेशन में मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हमें जरूर इख्तियार करना चाहिए, वो ये है टू लिव इन द प्रेजेंट, टू बी मोर प्रेजेंट ओरिएंटेड। आप अगर इस मीटिंग में हैं तो यू शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है जी, मैं आपसे अर्ज करता हूं ये क्या होता है। इसमें मैंने अगर कोई बात की है जो कि आपके ख्याल में आपके मौजूद इल्म के खिलाफ है, तो आप असल में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, आप या तो माजी में चले जाएंगे या मुस्तकबिल में चले जाएंगे कि इस बात का नतीजा क्या निकलेगा। ठीक है जी, आप बजाय प्रेजेंट रहने के, अगर कोई आदमी जो है वो आपसे गुफ्तगू कर रहा है, तो आप बजाय इसके कि उसकी बात को पूरी तरह सुन सकें, उसको नोटिस कर सकें कि वो क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा है, आप फौरन चले जाएंगे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या उसका मोटिव क्या है, यानी वो उसके या माजी में चले जाएंगे या उसके मुस्तकबिल में चले जाएंगे। तो मेडिटेशन जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हमें सिखाती है वो ये है कि हाउ कैन बी प्रैक्टिस टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है जी, एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, आपको इस पे बहुत इंपॉर्टेंटली इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है, और इसके नतीजे में यू समझ लें कि एक बड़ा अच्छा उसका इंडिकेटर ये होता है कि द मोमेंट यू लाई डाउन टू स्लीप यू कैन एक्चुअली एम्प्टी योर माइंड, आप अपने जहन को खाली करके अब पूरी तरह से आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, काम हो सकते हैं, और अगर ये हो गया है तो फिर इसका मतलब है कि अब जहन आपके कंट्रोल में आ रहा है। ये जो हमारा दिमाग है ये बिलमूम हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, ये अपने तौर पर ही चलना शुरू हो जाता है। अगर आप ये चाहें, मैं अगर ये प्रैक्टिस कराऊंगा इंशाल्लाह, मैं ये सोन वी विल बी टेकिंग अप द टॉपिक ऑफ मेडिटेशन एज वेल इन इन अ फ्यू सेशंस, तो आप ये देखिएगा कि व्हेन वी प्रैक्टिस दैट तो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू एम्प्टी योर ब्रेन, ये कितना मुश्किल हो जाता है जी। तो इनशाला वील बी प्रैक्टिसिंग दैट, लेकिन आपकी बात का जवाब ये है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए ये चंद चीजें हैं, एक तो ये कि हम मेडिटेशन से और दूसरा रिफ्लेक्टिव जर्नल से, कि हम उसके बारे में रिफ्लेक्टिव अपनी एंट्रीज करें कि ये जब बात हो रही थी तो मेरा दिमाग किस तरह से आगे या पीछे चला गया था, या मैं इस तरफ चला जाता हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या इस तरफ चला जाता हूँ। यानी देखिए, मैं अगर लोगों से कहता हूँ ना जी कि आपने, अगर किसी ने बुराई की है तो उसके जवाब में भी अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े रहें, तो मैं आपको बताता हूँ उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है वो क्या होती है कि अगर हम ये करेंगे तो लोग हमारा फायदा उठाना शुरू कर देंगे। ये देखिए क्या हुआ है, बजाय इसके कि बात के मेरिट को देखा जाए, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना शुरू हो जाएंगे। यानी अगर मैंने ये किया तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरे से एडवांटेज लेना शुरू कर दें, कहीं ऐसा, वो बाद में देख लेंगे, लेट्स टेक दैट अप एज अ सेपरेट टॉपिक। लेकिन सवाल ये है कि ये जो एस्पेक्ट है कि करना क्या चाहिए, इसके अंदर हमारा रहना इसलिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज वी आर ऑलवेज रनिंग आफ्टर समथिंग दैट इज इन द पास्ट और समथिंग दैट विल बी इन द फ्यूचर। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन जी, यू कैन पुट इट ऑन द इन द चैट बॉक्स, जो कॉमेंट बॉक्स है, इनशाला कोशिश करेंगे वो भी जवाब दे हो जाए जी। बहुत शुक्रिया जी।
मोई साहब, मोई
वालेकुम।
साहब, माय क्वेश्चन इज, जैसे आपने कहा कि अल्लाह के सारे आपने एट्रीब्यूट्स मेंशन किए हैं, मुझे हमेशा ये होता था कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ अल्लाह की नॉलेज में हो रहा है। आपके समझाने से पता लगता कि अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह इज डूइंग इट। तो अगर देखें, फॉर एग्जांपल, अ स्मॉल यू हैव अ स्मॉल चाइल्ड एंड ही हैज एन एक्सीडेंट एंड ही डाइज, आपको इस जिंदगी में तो नहीं पता लगेगा कि अल्लाह का क्या पर्पस था ये आपके ऊपर सौरव लाने का। या इफ यू हैव अ चाइल्ड हुज रिटार्डेड एंड यू आर स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ योर लाइफ लुकिंग आफ्टर अ रिटार्डेड चाइल्ड, अगेन यू विल नॉट नो टिल यू डाई एंड फेस अल्लाह एंड कैन से बी अल्लाह व्हाई डिड दिस हैपन टू मी। सो ये मुझे जो आप कहते हैं पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन अल्लाह की, ये सब सही है, बट दैट मीन्स दिस लाइफ वी डोंट हैव द आंसर्स।
That is precisely the reason why we say that it is a matter of faith. Because if we could simply meet God and ask Him, then we won't be calling it faith. We'd be calling Him a first-hand information from the Creator Himself. Like I met Him and I said, why did you do this? देखिए, जैसे फॉर इंस्टेंस जो हजरत मूसा का वाक्या है सूरह कहफ में जो बयान हुआ है, वो असल में इस चीज की मिसाल है। ठीक है जी, कि अल्लाह ताला ने अपना एक नुमाइंदा भेजा, हजरत मूसा को एक एक्सपीरियंस कराया गया कि ये बात, और मुसलमानों को बताया गया, वक्त के मुसलमानों को, जब सूरह कहफ मक्की सूरह है, बड़ी बड़ी मुश्किल में लोग मौजूद हैं, कुरान मजीद ने एक बड़ी क्लियर अनइक्विवोकल बात कर दी है, बड़ा स्ट्रेस दे के कर दी है कि ये पैगंबर अब दुनिया में जो आ गया है, इसके नतीजे में लाजिमन ना मानने वाले जो हैं उनका बुरा मामला हो जाएगा, और लाजमन जो अच्छे मानने वाले लोग हैं उनके साथ जो है अल्लाह ताला की रहमतों के साथ बहुत अच्छा मामला होगा। ये प्रिडिक्शंस आ चुकी हुई है। मामलात इस तरह के हैं कि अपेरेंटली एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट दीज प्रिडिक्शंस, और चीजें जो हैं वो कुफार की बेहतर नजर आ रही हैं और मुसलमानों की जो हैं वो मुश्किल तरीन होती चली जा रही हैं। ये वो जो वो टाइम है कि जिसमें हजरत खदीजा की डेथ होती है, और वो जो कहत का भी मामला हो गया था, बड़े देर तक इनको खाने पीने की भी मुश्किल हो गई मुसलमानों के लिए। तो ये टाइम आप इस तरह से इमेजिन करें कि अल्लाह ताला ने ये बता दिया है, ये वादा कर दिया है, और लोग जो हैं पैगंबर की मौजूदगी में इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो ये वाक्या सुनाया जाता है और ये बताया जाता है कि हम जब लोगों के साथ ये मामला करते हैं तो किस तरह से होता है, वो आप वाकया सूरह कहफ में देख सकते हैं, वो जिसको बड़ा मशहूर जो लोग कहते हैं कि मूसा और खिजर का वाकया जिसे कहा जाता है। आई थिंक दैट इट इज अ पार्ट ऑफ हजरत मूसाज एजुकेशन। ठीक है जी, और वो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक रियल वाकया हो, वो तो अल्लाह ताला जिस तरह से अपने पैगम्बरों को ख्वाबों के जरिए से सिखाते हैं, तालीम देते हैं, उस तरह से भी हो सकता है। बट द थिंग इज, जो उसके अंदर जो हिकमत बताई गई है कि अल्लाह ताला के फैसलों के ऊपर अपने आप को राजी रखना, क्योंकि अल्लाह ताला कई दफा जो बुराई हो जाती है अच्छे लोगों के साथ, तो वो किसी बड़ी बुराई से बचा लेते हैं। ये सिर्फ एक रीजन बताया गया, हजारों रीजन हो सकते हैं, यानी आप इमेजिन करते जाएं, और वो रीजन हो सकता है कि अल्लाह ताला जब ये मामला होता है तो किस तरह से हम, एक छोटा बच्चा है, बड़ी बड़ी दुआओं के बाद उसको हासिल किया है, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने जिंदगी अगर नहीं दी है तो कल यकीनन हम पूछ सकेंगे, आज उसका ताल्लुक हमारे फेथ से है। और मैं ये चाहता हूं, इसी वजह से इस सवाल पर एंड किया जी मैंने, दैट हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट दीज इवेंट्स। जब आप ये बनाएंगे तो आपको असल में ये फेथ की प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलेगा। अगर मेरा फेथ है, मिसाल के तौर पर आप बचपन से किस तरह देखते आ रहे हैं इस तरह के वाकयात को, ये अभी सैलाब आया, हाउ डू यू सी दिस, किस तरह हुआ, क्या हुआ, और अगर फेथ हो तो फिर आप किस तरह देखेंगे। तो इट इज नॉट अबाउट बीइंग एबल टू आस्क गॉड टुडे, अगर ये हो पाता तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर तो मैं उसको फेथ कहता भी ना, और शायद कोई भी ना कहने की जरूरत होती। लेकिन आज हमें फेथ कहने की जरूरत इस वजह से है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन जी।
नहीं मोहिसम, आई एम नॉट सेइंग अबाउट आस्किंग गॉड नाउ। आई सेड ये हमें पता लगेगा हमारे मरने के बाद, कयामत के बाद। मीनवाइल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इफ योर चाइल्ड डाइज और इफ योर चाइल्ड इज रिटार्डेड, इस लाइफ में आप एक्सेप्ट करेंगे विद सोरो एंड यू हैव टू पास दिस लाइफ। सो उसका फिर आप कह रहे हैं पर्पसफुल कंस्ट्रक्शन, देयर इज अ रीजन। Sometimes you don't understand the reason. That's why I used to
You
say
don't.
Allah cannot. Yeah.
That is, यही मैंने गुजारिश की थी। If you understood the reason, तो फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना। असल में जब फेथ बीच में आ गया तो वो क्यों आया है, यानी मुझे ये यकीन रखना, इस तरह की सिचुएशन में यकीन रखना कि ये अल्लाह ताला की रहमत, आप गौर कीजिएगा जो जो हमने अभी क्वालिटीज बयान की हैं, अल्लाह ताला की रहमत, उसकी ओमनिशियंस, उसकी ओमनिपोटेंस, उसकी जस्टिस और उसकी विजडम, इन सब को सामने रखकर अब इस वाक्य को कंस्ट्रक्ट करें। जब इस वाक्य, मैं नहीं जानता, यू विल नेवर, आई विल नेवर बी एबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट रीजन, बट व्हाट आई कैन से इन द लाइट ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स, दैट इज व्हाट माय कंस्ट्रक्शन डिराइव्ड फ्रॉम फेथ विल बी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। और इसकी जरूरत इस वजह से है कि मैं उसके स्पेसिफिक रीजन को नहीं जानता। अगर देखें, मैं, मेरे सामने खुदा की रीजन आ जाती तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं थी ना जी, फिर तो मैं समझता, फिर तो शायद हो सकता है मैं दुख के मामलात में भी खुशी मना रहा होता कि ये तो जबरदस्त हो गया, ये तो अल्लाह ताला ने कमाल कर दिया। तो ये इस वक्त नहीं है, इस वक्त मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे सामने जो रियलिटी है वो इस जिंदगी की और मेरे इस कमरे की रियलिटी है। मेरे सामने तो इस वक्त ये भी रियलिटी नहीं है कि इस कमरे से बाहर क्या हो रहा है, ठीक है ना जी। तो ये जो एस्पेक्ट है, इसके अंदर अपने साथ होने वाले वाकयात की मैं क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, करता हूं ना, मतलब मुझे ये याद है, मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना हुआ है, ऑनेस्टली मैंने ये कहते हुए सुना हुआ है। हम डेथ पे गए किसी के अफसोस करने, और उधर हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनका उनका पेट जुमला ये होता था कि बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया। ये दिस इज द वे ही वुड एक्चुअली कन्वे हिज कॉन्डोलेंसेस। सवाल ये है कि ये करने वाला कौन है, वो जिसकी कि अभी हमने ये देखी है कि एट्रीब्यूट्स हैं मर्सी, विजडम, जस्टिस, ओमनिपोटेंस, ओमनिसियंस, वो जुल्म करेगा, सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। ये जब मेरे अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी चीज कि नहीं, खुदा ने होने दिया है और यकीनन इसमें कुछ मेरा फायदा होगा, फिर ये है जिसकी मैं बात कर रहा हूं जी। ये दिस कैन ओनली बी डिराइव्ड आउट ऑफ फेथ।
So we have to make our faith strong and I see. बहुत बहुत शुक्रिया। It
यू
is
मोस्ट वेलकम।
thank you.
अस्सलाम वालेकुम सर,
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
कैसे हैं सर?
अल्लाह का शुक्र है जी, आप नहीं है।
सर मैं आपकी लास्ट बात पे ये कहना चाह रही थी कि फायदा, अगर आपने कहा कि हो सकता है किसी की मौत पे फायदा मिल जाए, लेकिन मुझे जो लगता है कि अल्लाह ताला की ये दुनिया कानून के तहत चल रही है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता इस बेस पे नहीं चल रही। डेफिनेटली वो सब कुछ कर सकता है, जब हमने उस पे ईमान ले आए तो ये चीजों को मान के ईमान लेके आए कि वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि जब कुछ ऐसे वाकयात होते हैं, जब किसी के साथ कोई दुख किसी को मिल जाए या किसी के साथ कोई हादसा हो जाए या कोई परेशानी में हो, तो उसके यही अल्फाज होते हैं कि मेरे साथ तो मेरे साथ ही होना था, या ये स्कीम के तहत एक दुनिया बनी हुई है, अच्छाई बुराई सब कुछ होना है, खुशी गमी सब कुछ होना है। अगर हम इसको दुनिया को कानून के तहत, अल्लाह के कानून के तहत समझना शुरू कर दें तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर नहीं है। एक तो ये,
अब
और
जी
दूसरा मैं ये
नहीं,
पूछना
एक
चाहूंगी
एक नहीं,
आपसे।
नहीं, आई एम सो सॉरी,
जी
आप
जी
अगला सवाल इसके बाद कर लीजिएगा वरना
जी
मैं
जी
भूल
जी
जाऊंगा जी, मेरी मजबूरी है। तो
जी सॉरी जी
ये देखिए, ये जो बात है कि अल्लाह ताला किसी स्कीम के तहत, किसी कानून के तहत बना रहे हैं, यानी उस कानून में आप अगर तो ये फरमा रही हैं कि अल्लाह ताला अब वो कानून चला के उसको एक तरह से स्टार्ट
छोड़
करके
दिया,
अब
छोड़
एक
दिया जी,
साइड पे बैठ गए हैं, ठीक है जी, नाउ ही
नहीं
इज लेटिंग इट गो। तो मेरा ये ख्याल है कि वो क्यों बैठे हैं, उसके अंदर भी ये एट्रीब्यूट शामिल होंगे फिर, ठीक है जी।
बिल्कुल
और ये बात कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो डायरेक्टली खुदा उसमें इन्वॉल्व है, ये भी असल
बेशक
में उस स्कीम ही के तहत हो रहा होगा फिर। प्रॉब्लम ये
बिल्कुल
नहीं, यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं कोई अलग से स्कीम दे रहा हूं अल्लाह ताला को, मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने जो भी प्रोग्राम बनाया हुआ है, अल्लाह ताला का वो प्रोग्राम इन एट्रीब्यूट्स उसमें शामिल हैं। एक बात तो ये जो अल्लाह ताला की सिफात हैं ये उसके मुताबिक ही प्रोग्राम चल रहा है। और जब कोई आदमी की डेथ होती है तो अल्लाह ताला ने कहा ना ये कि कोई आदमी भी एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकता जितनी मैंने लिखी है उससे, और एक सांस भी कम नहीं आएगी उसको जितनी मैंने लिखी है उससे, यानी कोई डेथ नहीं हो सकती, कोई आदमी पैदा नहीं हो सकता, कोई आदमी जी नहीं सकता, ये सब कुछ जो है ये इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है खुदा। ये जो बात है, यानी व्हेन वी से दिस कि अब असल में एक चीज शुरू कर दी है और इसके बाद वो हो रही है, ठीक है जी। देखिए मेरे साथ जो मामला हो रहा है, अल्लाह ताला मिसाल के तौर पर अगर मेरे साथ कोई जुल्म हुआ है तो ये सवालात कुछ पैदा होंगे, अल्लाह ताला रोक सकता था उस जुल्म को मेरे साथ होने से, रोक भी देता है। आपने कभी गौर किया होगा कि
जी जी
मेनी टाइम्स एक आदमी ने पूरी कोशिश कर ली दूसरे को मार देने की, नहीं मार सका, ठीक है, उसने गोली तक चला दी, ठीक है जी, और वो गोली जिधर लगनी थी वो उसकी टांग पे लग गई मिसाल के तौर पर, ठीक है ना जी, और वो उसकी जान जा सकती थी, उसके सर पे लग सकती थी, उसकी आंखें जा सकती थी, नहीं गई, ठीक है जी। वो जो यानी कॉज एंड अफेक्ट का रिलेशनशिप है उसके अंदर इतनी एक्सेप्शन आ जाती हैं कि देन यू हैव टू सी कि ये क्या चीज हो रही है। तो फिर या तो रैंडम है और या फिर एक खुदा का हाथ इसमें शामिल है। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से उसमें जो हैपनिंग्स हैं इवेंट्स में, वो आई एम नॉट एट ऑल, अभी तो मैं वो बयान भी नहीं कर रहा हूँ कि वो मैं किस तरह से देख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ जी कि ये खुदा की सिफात हैं। नाउ यू हैव टू मेक अ कंस्ट्रक्शन असाइनमेंट, जो आपको मैं चाहता हूँ कि आप में से जो लोग ये चाहते हैं करना, जाहिर है कि दिस इज नॉट अ क्लास, ये तो आपकी पार्टिसिपेशन सारी की सारी वॉलंट्री है, आप जो करना चाहते हैं वो जो ये अभी मैंने आधा क्या 20 मिनट्स में जो बात एक्सप्लेन की है, इसके एंड पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपने जहन से निकालने निकाल के तो हाथ से लिख लें, उसको डिस्कस कर लें, उसको आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लें, क्लास में शेयर करना चाहें तो अगले अगले हफ्ते उसको शेयर कर लें। सो व्हाट विल हैपन इज कि आपकी कंस्ट्रक्शन, फेथ बेस्ड कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इस तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बस ये वाला
बिल्कुल
एस्पेक्ट है। अब आप फरमाइए
थैंक्स।
दूसरा सवाल जो आपका।
मैं इस पे थोड़ी सी चीज ये ऐड कर दूं, इसी सवाल में, ये एक्सप्लेन कर दूं अपनी बात को। मैंने जो मेरे साथ लोग मिले हुए हैं, जब मैं उनके अल्फाज सुनती हूँ कि उसके साथ, जैसे आपने कहा कि कोई बच भी सकता है, मेरा जो जहन होता है अल्लाह के बारे में, उसके तारीफ के बारे में, मैं वो ये समझाना चाहती हूँ कि वो ये सब कुछ कर सकता है लेकिन उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। हम दुआ करेंगे, हम पूरे ईमान के साथ उससे मांगेंगे, वो नहीं देता तो फिर हमें भी राजी होना होगा। ये चीज जहन में रख के हर चीज पे चलना चाहिए, ये
राइट
मेरा
right.
जहन कहता है।
नहीं
दूसरा ये
देखिए,
सर मैं
आप जब कहते हैं ना खुदा की मर्जी,
जी
इसको एक्सप्लेन कर लें, खुदा की मर्जी होती क्या चीज है। यानी देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी मर्जी में और खुदा की मर्जी में ये फर्क है कि मैं, मेरी मर्जी ये है कि यार मुझे कुछ थोड़ा सा फायदा हो जाए, मेरे बच्चों को फायदा हो जाए, ठीक है जी, और खुदा की मर्जी जो है वो उन एट्रीब्यूट्स पे बेस्ड है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं। खुदा
बिल्कुल
जब कोई चीज चाहता है कि हो जाए तो उसकी हिकमत, उसके इल्म, उसकी कुदरत, उसकी रहमत और उसके अदल का तकाजा होता है।
मेरे मेरा भांजा बहुत छोटा सा था सर, तकरीबन 3 माह वो रहा पैदा होते ही हॉस्पिटल एडमिट हो गया, और फर्स्ट बेबी था, 5-6 साल के बाद हुआ था। हम ले गए उसको 2.5-3 माह उसकी सेहत के साथ, जाहिर बात है हम जिस कंडीशन से गुजर रहे थे सब, कि अल्लाह ताला मतलब इसकी जिंदगी दे दे। तो उस सिचुएशन में मैं अपनी भाभी को और उनको यही समझा रही थी कि हम दुआ करेंगे, हमारी पहुंच में जो जो चीजें हम वो सब कुछ करेंगे, हम इसका इलाज भी करवाएंगे, लेकिन ये जहन में रखना रखना ये अल्लाह की अमानत है, वापस जा सकती है। मतलब उनकी उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। मैं ये कहती हूँ कि हम अपनी जो मेरी अल्लाह ताला ने मेरे अंदर दी है पहुंच, या उसको ताकत कह सकते हैं कुछ भी, मैं उसके हिसाब से निजाम चलाऊंगी दुनिया का, करूंगी सब कुछ, लेकिन लास्ट पे अल्लाह ताला को जरूर जहन में रखना है कि मेरी हिकमत के बाद, मेरी जो चीज है उसके बाद अल्लाह की हिकमत है,
क्वाइट
ये कह
राइट।
रही हूँ
और
जी।
इसमें आपने बड़े अच्छे अल्फाज यूज किए हैं जी, रजा के राजी रहना है, ठीक है
जी
जी।
बिल्कुल सर,
ये जो एस्पेक्ट है राजी रहने का, ये अगर आपने आम हालात में इसकी तरबियत नहीं की हुई तो मुश्किल में इसको डेवलप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक
बिल्कुल सर, बिल्कुल
है जी।
सर।
राजी
मेरा
रहना है,
दूसरा जी जी
तस्लीम में रख अपनी, उसके आगे तस्लीम का मामला करना है। तस्लीम का मतलब होता है टू सबमिट इन फ्रंट ऑफ हिम, कि नहीं
बिल्कुल
मैं तेरा बंदा हूं, यानी जो तेरा हुक्म है मैं उसके आगे सरे तस्लीम खम करता हूं। आई एम विलिंगली हैप्पीली सरेंडरिंग, एक चीज मैं राजी हूं, जिस पर तू राजी है मैं उस पर राजी होना चाहता हूं। मेरी दुआ है ये, अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। ये जो आप कहते हैं रजा है, ये जो आप कहते हैं कि तस्लीम होनी चाहिए, ये असल में जब तक वो पीछे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी ना जी, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, यानी
बिल्कुल
वो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये रखना बड़ा मुश्किल है कि एक ऑल नोइंग, ऑल वाइज, ऑल पावरफुल, ऑल जस्ट और ऑल मर्सी गॉड ये कर रहे हैं
बिल्कुल
फैसला।
सर,
जब वो कर रहे हैं तो फिर राजी भी रहना चाहिए जी। आपका
बेशक
दूसरा सवाल भी आप
बेशक
फरमाइए जी।
जी जी मैं सर ये पूछना चाह रही थी कि हमारी फितरत इस चीज को कबूल करती है, खुदा का या किसी भी चीज का वजूद नहीं हो लेकिन उसके मुहरकात या निशानियां हमें मिल रही है, हम मानते हैं, हमारी फितरत में अल्लाह ताला ने ये चीज रख दी। मेरा सवाल ये था कि फितरत में कौन सी चीजें हैं जिसके एस्पेक्ट पे हम ये मानते हैं, अगर आप एक दो चीज बता दें तो मैं थोड़ी सी क्लियर हो जाऊंगी इस चीज पे। हमारी ये ग्रुप में बहुत बात चल रही थी 2-3 दिन से, तो उसमें ऐसे ऐसे सवाल आ रहे थे, बता तो रहे थे कि फितरत मानती है, लेकिन फितरत की कौन सी चीजें थी वो समझ नहीं आ रहा था, अगर आप इसको थोड़ा सा बता दें तो मेहरबानी होगी।
देखिए, मैं जो चीज समझा हूँ वो ये है कि कुरान मजीद में जिस जगह पर इसका जिक्र हुआ है, मुझे उस आयत से जो चीज समझ में आती है मैं वो बयान कर देता हूँ। इससे जाहिर है कि इख्तलाफ हो सकता है। वो ये है कि वहां पर जो चीज जेरे बहस है वो ये है कि जब एक चीज इस्तदलाल से साबित हो जाती है, जब एक चीज के बारे में तुम्हारे तुम्हारे जेहन में जो पूरी कंस्ट्रक्शन है वो जिग्सॉ पजल की तरह कंप्लीट हो जाती है, तो तुम्हें वो बात माननी चाहिए। किसी चीज को बगैर किसी दलील के, अगर दुनिया और आसमान में एक चीज की दलील ही नहीं पाई जाती तो तुम ऐसे ही अपने तवहमात के चक्करों में क्यों मानते हो? ये फितरत के खिलाफ है बात। वी शुड सबमिट, वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी विच वी अंडरस्टैंड टू बी द रियलिटी। और अगर कोई बात ये समझाना चाहे कि ये रियलिटी आपने जो समझी है इसमें ये खामी है, तो अब फितरत का तकाजा ये है, इंसान की फितरत का, उसके अंदर भी रखे हुए उस पोटेंशियल का तकाजा ये कि हम उसकी बात सुने और अगर समझ में आ जाती है तो अपनी राय बदल लें। ये है फितरत। यानी
एग्जैक्टली
फितरत से मेरी मुराद ये वो वाला पोटेंशियल है कि इंसान के अंदर सलाहियत रखी गई है कि वो बात समझ सकता है, अपनी लैंग्वेज में अपने इस्तदलाल के साथ समझ सकता है। और जब वो समझ लेता है तो बगैर किसी दलील के उसके अंदर ये तवाहुमात भी रख दिए गए हैं, यानी मौजूद है, ये भी पोटेंशियल है कि वो अगर फितरत से इन्हराफ करे तो काली बिल्ली के रास्ता काटने पर रास्ता ही बदल लेता है, ठीक
सही
है ना जी। उसका कोई इस्तेदलाल नहीं होता, कोई वजह नहीं होती उसको चेंज करने की, लेकिन हम कर लेते हैं। इसलिए क्योंकि हम उस ट्रेडिशन के अंदर खड़े हैं कि जिसमें यार कहीं कोई बुराई ना हो जाए, ये देखें ये है तवाहमात, ये है वो सुपरस्टिशंस जो बगैर किसी दलील के हम लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है ना जी। तो मेरे हिसाब से फितरत का मतलब असल में यही है।
फितर सही सर, क्योंकि अल्लाह ताला जो अपनी निशानियां तौहीद पर दे रहा है वो यही, उसका भी
वो
मेरे ख्याल में
एक्चुअली
जो
वो
मौकफ है
अगर
वो ही
समझ
है।
में
बिल्कुल
आती है, देखें क्या कह रहे हैं वो
हाँ
फितरत का तकाजा है ये कि जो
बिल्कुल
पैगंबर की जुबान से कहलवा दिया कि अगर तुम ये साबित कर दो कि खुदा की औलाद है तो मैं सबसे पहला मानने वाला बनूंगा।
बिल्कुल सर,
तुम वजह तो दो ना, मतलब कोई दिखाओ तो सही कि खुदा की ये जरूरत थी इस वजह से उसने बेटा बना दिया या बच्चे बना दिए, कोई बताओ तो सही ना, कोई बोलो तो
या
सही।
उसका अगर शरीक भी है तो किस बेस पे आप लोग कहते हो,
अब किस
कहना किस
बेस
पे
पे
है
कह रहे हैं
उसका।
वो, बेसिस तो
हाँ
बताएं। क्या
सही
खुदा के मतलब ये पांच सिफात उसके अंदर है, ओमनिपोटेंट है वो, उसको वो एक लिविंग गॉड है, ही इज अलाइव ऑन हिज ओन, यानी मेरी तरह नहीं है वो मेरी, मैं आई एम नॉट अलाइव ऑन माई ओन, इसको जेन में रखें। मेरे लिए आई हैव टू हैव थाउजेंड्स ऑफ थिंग इन प्लेस टू बी एबल टू टेक माई नेक्स्ट ब्रेथ, यानी उसमें से एक चीज का भी बैलेंस ऊपर नीचे कर दें, कुछ मेरे अंदर है वो चीजें, कुछ मेरे बाहर है, जरा सा ऑक्सीजन का बैलेंस ऊपर नीचे कर दें मैं खत्म हो जाऊंगा, ठीक है जी। यानी खुदा अलाइव ऑन हिज ओन है, ये है अल हई का मतलब, अल हई है वो, ठीक है ना जी। आप ये बताएं कि क्या वजह है कि उसको जरूरत पड़ गई, वो ओमनिपोटेंट नहीं था, उसको मददगार चाहिए थे, व्हाट वाज द रीजन दैट ही नीडेड मोर गॉड्स। ये इस्तदलाल, यानी
बेशक
इस्तदलाल
बेशक
करोगे तो मान लेंगे।
बेशक बेशक। लास्ट पे सर यही कि अगर इसको एक जुमले में बोला जाए तो फितरत दलील मांगती है या दलील पर चलती है, ये कहा जा
जी
सकता है।
जी जी
शुक्रिया, जजाक अल्लाह सर।
माफ कर दीजिए, शुक्रिया जी,
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
शुक्र अलहमदुल्ला जी। आप सुनाइए हमदा, खैरियत से हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, बेसिकली मैंने आपका क्वेश्चन ही समझना है। द क्वेश्चन वॉज वॉट इज योअर कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सो इफ फॉर एग्जाम्पल सम मोमेंट्स हैपन इन द पास्ट एंड आफ्टर सम टाइम सम ईयर्स आई केम टू अंडरस्टैंड वाई इट हैपन, तो लेट्स से द एबिलिटी टू सी सच इवेंट्स बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड वी कंस्ट्रक्ट सम रियलिटी, इज इट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक हाउ टू कंस्ट्रक्ट
थोड़ी
आवर
सी
रियलिटी?
आपकी आवाज जो है ना जी, इट वाज अ लिटिल डिस्टर्ब्ड। आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज माय कनेक्शन और इफ यू नो इट वाज बिकॉज ऑफ योर कनेक्शन, बट व्हाट एवर आई अंडरस्टूड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑन दैट। देखिए, आफ्टर सम टाइम लेट से यू हैव कम टू रियलाइज दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ विजडम इन्वॉल्वड इन समथिंग which when it happened you were not really enjoying it or you were not really fully with it, but after some time it dawned on you that it was a deep wisdom aur uske natije mein bada fayda hua hai aapko. I'm not talking about those incidents, I'm talking particularly about those incidents where you still don't know why something happened, theek hai ji. अब वी कंस्ट्रक्ट रियलिटी, देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का मतलब ये होता है, पहले तो इसको इस फ्रेज को समझ लें, वी डोंट हैव एवरीथिंग इन आवर नॉलेज। सो फॉर इंस्टेंस इफ समबडी, आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो, या आप टीचर, आप अगर स्टूडेंट हैं, बोथ वेज, इसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप एक मीटिंग में हैं अपने टीचर के साथ, एंड द टीचर इन योर यू नो अंडरस्टैंडिंग टीचर एक्टेड अ लिटिल इरिटेटेड, आपने एक बात की और, या आप मीटिंग में बैठे हैं अपने एक एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में बैठे हैं, वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव उसने आपकी तरफ देखा और अपना कलम इस तरह रख दिया और यू नो आपकी से नजरें नहीं मिलाई उसके बाद, तो अब आप इस पूरी की पूरी सिनेरियो को आप एक्सप्लेन करते हैं अपने ब्रेन में। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ रियालिटी, जिधर आपके पास सारी चीजें आपके सामने नहीं होती हैं, Therefore, we have to construct it. अगर एक आदमी मिसाल के तौर पर आपसे बात करते हुए ये कह दे कि देखें हमजा मैं इस वक्त बहुत इरिटेट हो रहा हूं, तो अब आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है कि इरिटेट हो रहा है, अब आप क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये क्यों इरिटेट हो रहा होगा। अगर वो ये भी बता दे तो इस पर भी अब आपको कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके इर्द गिर्द कुछ लाइफ इवेंट्स हो रहे हैं, आपके सामने उसके पूरे रीजंस नहीं है, और जब पूरे रीजंस नहीं है तो अब आप उनके अंदर कुछ कंस्ट्रक्ट करें। जिस तरह मैंने अभी गुजारिश की कि मेरे एक बुजुर्ग थे, जब वो अफसोस करने जाया करते थे तो उनका एक पेट जुमला होता था कि बड़ा जुल्म हो गया। तो देखें क्या हो रहा है, उन्होंने इस वाकये को जुल्म से ताबीर किया है, तो ये उनकी कंस्ट्रक्शन बन रही है। आई एम नॉट सेइंग कि वो लाजमन इसको जुल्म समझते भी होंगे या नहीं, लेकिन हमारे अल्फाज का हम पर बड़ा असर होता है जी, इसलिए हमें वी शुड बी वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स एंड विद द थॉट्स दैट वी इंडल्ज इन। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप अपने किसी माजी करीब के, रिसेंट पास्ट के कोई वाकयात को ले लें, कुछ आपके साथ अच्छा या कुछ बुरा हुआ हो, एंड ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दैट इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट ये खुदा है जिसको आप मानते हैं और ये खुदा की ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है जी, इन द लाइट ऑफ दिस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। जब आप वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब थोड़ी देर के लिए किसी और के सामने रख दें बगैर खुदा के बिलीव के, ठीक है जी, और ये कहें कि आप इस वाक्य को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको कंपेयर करके देखें और फिर ये देखें कि आपके बिलीफ से आपकी कंस्ट्रक्शन पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ये बात हमजा वाजे हुई थी मैं जो अर्ज की है? जी
जी सर, मैं थोड़ा सा सर इसको मजीद एक्सप्लेन
जी
करना
बताइए।
चाहूंगा अपनी क्वेश्चन पे। मैं पहले जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, आई गॉट आंसर, थैंक्स फॉर दैट।
ओके
लेकिन सर ये है कि हम अगर कोई बंदा मेरे सामने किसी स्ट्रेंज वे में बिहेव कर रहा है, या इस तरह कह लें कि कोई स्ट्रेंज इवेंट हो रहा है, या फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कोई, सॉरी टू से, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल कोई इस तरह की इवेंट हो रहा है कि जिस जिसको मुझे, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ वो चीजें देख के या सुन के, तो हम इन चीजों को कैसे देख सकेंगे? ये कुछ चीजें जो हमें समझ आती हैं कि शायद वो फेस से रिलेट करेंगी, लेकिन कुछ चीजें वो जो हम कहते हैं कि यार ये तो फेस से भी इनका कोई रिलेशन नहीं है, या कम से कम मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो चीज नहीं आती अभी, तो फिर
अच्छा,
हम
ये दैट्स अ गुड क्वेश्चन जी, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आप पूरी कर लीजिए बात, आई एम सॉरी।
जी सर कंप्लीट हो गया।
देखिए असल में इवेंट में फेथ शामिल है या नहीं शामिल है ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा जी, आप उस इवेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप जब ये कहते हैं कि ये वाकया जो है ये हुआ है, बड़ी गलत बात हुई है, मैं खुदा को एक मेहरबान खुदा मानता हूं, उसने ये क्यों होने दिया, ये सवाल पैदा होना चाहिए ना,
जी सर
बात समझ रहे हैं? यानी ये देखें, ये है वो जगह कि जिधर आपकी जो जिंदगी में खुदा जो फेथ आपने क्रिएट किया हुआ है, ये असल में इट गेट्स चैलेंज्ड। चैलेंज के मौके पर हमारे पास दो तरीके होते हैं क्लियरली। एक तरीका ये होता है कि हम अपने दरवाजे बंद कर लें और ये कहें कि यार मत पढ़ो इसमें, ऐसे कहीं ईमान ही ना चला जाए, और एक तरीका ये होता है कि उस चैलेंज को मीट करें और फिर ट्राई टू रिजॉल्व दी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स को जब आप रिजॉल्व करेंगे जिंदगी में, और ये बार बार आप याद रखिएगा कि पैराडॉक्सेस रिजॉल्व करने से आपकी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत स्ट्रेंथन होती है, इससे ज्यादा स्ट्रेंथन और किसी चीज में नहीं होती। यानी व्हेन यू विल अंडरस्टैंड, मैं खुदा को रहमान मानता हूं, मैं खुदा को रहमत वाला मानता हूं, मैं खुदा को विजडम वाला मानता हूं, ये जो वाकया हो गया ये तो सरासर जुल्म हो गया है, और खुदा को मैं मानता हूं कि वो ओमनिपोटेंट है, खुदा को मैं मानता हूं कि वो ओमनिशियंट है, उसको पता था कि ये हो जाएगा और ये हो गया है। तो अब ये जो सारी सिफात है उसकी, ये एक पैराडॉक्स बन रहा है, ठीक है? आप मेरी बात वाजे हो रही है जी?
जी, लेकिन
इस
सर थोड़ी सी
पैराडॉक्स को
एक्सप्लेन,
जी
हाँ जी थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा विथ सम
जी
एग्जांपल
ये जब
प्लीज।
आपके जहन में पैराडॉक्स बनता है, यानी मैं एक रहमान रहमत वाले खुदा को मानता हूं और पाकिस्तान में सैलाब आया और हजारों लोग बेघर और हजारों लोग डूब के मर गए, अब ये एक पैराडॉक्स है। यानी अब अच्छा, क्या आप ये मानेंगे कि खुदा के कंट्रोल में नहीं था, ये खुदा की तरफ से आया ही नहीं, मतलब अल्लाह चाहता भी तो रोक नहीं सकता था, ये
नहीं
मानेंगे?
कभी
ये भी
भी
नहीं मानेंगे? इसका मतलब है कि सब कुछ में खुदा इन्वॉल्व भी है, वो रहमत वाला भी है। अब इसको रिजॉल्व करें, ये जो आप रिजॉल्व करेंगे ना, ये है जो असल में आपकी फेथ की रेजोल्यूशन होगी।
इंटरेस्टिंग सर, वेरी
समझ
इंटरेस्टिंग।
आ गई जी? ये पैराडॉक्सेस को रिजॉल्व करने में असल में फेथ क्रिएट होना शुरू होता है जी, और स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाता है। यानी
लेकिन
देखिए
सर
क्या हुआ था उस वक्त वाकया में, जो आपको मैंने अभी जो बताया ना, एक हजरत मूसा के साथ जो वो जो उनकी तालीम के लिए जो वाकया हो रहा है, उसमें हजरत मूसा को ले जाया जा रहा है, तो वो चलते चलते एक साहब जो है वो कहते हैं कि ये दो यतीमों की किश्ती है, इसमें हम जरा सफर करेंगे, करते करते उन्होंने उसमें छेद कर दिया। आप यूं समझें कि यतामा की दो यतीमों की किश्ती में अचानक नुकसान हो गया, ठीक है जी। अब एक आदमी जो देख रहा है, एक आम इंसान की जगह पर, वो ये सोच रहा है कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ताला ने ये यतीमों की किश्ती में मोरी करवा दी। यानी ये हजरत मूसा की तरफ से जरा थोड़ी देर के लिए उनके पर्सपेक्टिव को लेने की कोशिश की, वो रुक नहीं सके, इतना शदीद सवाल पैदा हो गया इसके बारे में। ये पैराडॉक्स है ना कि खुदा के
जी
नुमाइंदे हो तुम, खुदा के नुमाइंदे बन के तुम आके यतीमों की किश्ती में मोरी कर रहे हो, यानी तुम ये चाहते हो कि वो डूब जाए। अब देखिए, जब वो रिजॉल्व होता है मसला, जब वो रिजॉल्व होता है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि इसकी इसकी वजह ये थी कि उन यतीमों के साथ एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि बादशाह वो सारी किश्तियां कब्जे में कर रहा था, तो अल्लाह ताला का फैसला ये था कि इस किश्ती को यतीमों के लिए बचाना है। तो उसने कहा कि ये छोटी सी इसमें इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दो ताकि बादशाह ये छोड़ दे। ये देखें
लेकिन
क्या
सर
हो रहा है,
ये
ये
तो सर
इंफॉर्मेशन। जी,
सॉरी 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 टू सर डिस्टर्ब, लेकिन सर ये
मैं
तो
सिर्फ इतनी बात कर
उनको
रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन हजरत मूसा को दे दी गई है, ठीक
दे दी गई एग्जैक्टली।
है।
लेकिन हमारे
अच्छा,
हमारे हमारे इर्द गिर्द जो इवेंट्स हो रहे हैं, हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, वो रीजन नहीं पता चल रही कि ऐसा क्यों हुआ है।
नहीं, असल में वो दे दी गई है, इसलिए अब जब ये बता दिया गया है, तो अब ये हजरत मूसा के ईमान का तकाजा नहीं रहा कि ये बात, यानी ये फेथ से नहीं रिलेट कर रही, ये हजरत मूसा को उसकी विजडम बता दी गई है। मेरे और आपके साथ मामला ये हो रहा है कि ये जो सैलाब आ रहा है, ये जो लोग नुकसान में पड़ रहे हैं, ये जो लोग जवानी में मर जाते हैं, ये जो लोग अपाहज पैदा हो जाते हैं, इनकी हिकमत बताई नहीं जा रही। अब ये फेथ से रिजॉल्व करनी है। डू यू गेट द, जो चैलेंज है हमारा वो ये, देखें जो हजरत मूसा का वाकया है, वो मैं सिर्फ इस एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं कि वहां पर अल्लाह ताला ने तालीम की गर्ज से ये दो तीन रीजन बता दी हैं, और ये कहा है कि बाकी जिंदगी में जो मामलात हो रहे होते हैं उनको इस रोशनी में देखो, ये होगा जो फेथ होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हमजा? जी हमजा साहब, बात समझ में आ रही नहीं? तो
जी सर, थैंक
बस आप
यू सर।
इसकी ट्राई करें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीक में, आप भी शेयर करना चाहें आप भी करें, नेक्स्ट वीक में मैं भी अपनी कंस्ट्रक्शन भी शेयर करूंगा जी, इंशाल्लाह।
थैंक यू सर, जजाकअल्लाह।
मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू। ये कहते हैं जी, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिट्रोएक्टिवली हैव फेथ, बट टू डिवेलप इट गोइंग फॉरवर्ड। What is the best way to convey Allah's raza to someone like that? It is not possible to retroactively have faith, but to develop it going. Actually, when I say that, you know, we need to be retroactive about. अभी जब पहले बात हो रही थी, तो उससे मैंने शायद एक बात की थी. I am not really fully grasping the context of this question. I am very sorry about that. But what I just said was that by being retroactive इन आवर ओन डूइंग्स, हम किस तरह से चीजों को ले रहे होते हैं उसके बारे में रेट्रोएक्टिवली हम लिखते हैं जब, तो हम उससे फ्यूचर के बारे में कॉन्शियस होना
नहीं
शुरू
आ
हो
रहा
जाते हैं,
फोन का।
हम फ्यूचर के बारे में कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने असल में ये बात की थी, यानी हम रेट्रोएक्टिवली रिफ्लेक्टिव होने के नतीजे में अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं फेथ वाइज भी। जो दूसरी बात है आपकी, वो ये कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू कन्वे अल्लाह रजा टू समवन लाइक दैट, इसको थोड़ा सा वाजे करें मेरे लिए। अगर कोई आप लोगों के साथ भी ये क्वेश्चन होगा जी, अगर है तो प्लीज, आई एम वेरी सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, आई एम ट्रूली सॉरी अबाउट दैट, बट इफ यू कैन हेल्प मी, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें इसकी, तो मैं इंशाल्लाह इसकी कोशिश करूंगा। अगर मुझे इस इम्तिहान का जवाब आता होगा तो जरूर दे दूंगा जी, इंशाल्लाह। आपने फिर फबिया नियाजी साहिबा, आपके आपके नाम की प्रोनंसिएशन अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे प्लीज वाजे कर दीजिएगा। سیدنا موسیٰ کا واقعہ ہماری تربیت کے لیے کوٹ ہوا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم ہر واقعے کی پیچھے کوئی حکمت ہونا دماغ میں رکھیں گے، قطع نظر اس سے کہ اس بات کے کہ ہمیں وہ حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے. اگر حکمت سمجھ میں آ جائے جی تو اس کے نتیجے میں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، لیکن اگر حکمت سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کو فیتھ سے ریزالو کریں گے ہم. یہ دس از مائی پوائنٹ. Thank you very much, Ji Fabia. Aapka bahut shukriya. And I think I'm getting your name right as well. Shukriya Allah ka. Ji.
Ji, Assalamu alaikum.
Walaikum Assalam. Tariq sahab, khairiyat se ji?
Ji, Allah ka shukriya. Aap theek hain?
Alhamdulillah, ji. Bilkul theek.
Achha, main apna question poochne se pehle again do comments kar dun. Balki ek hi comment hai. وہ یہ ہے کہ آج کے کوشچنز میں خاص طور پہ خواتین کی طرف سے کوشچنز آئے ہیں کہ زندگی میں بہت بڑے بڑے صدمے آ جاتے ہیں، تو کئی دفعہ مطلب ویسے تو ہم سب بلیو کرتے ہیں، پاکستان میں ہیں سارے بلیو کرتے ہیں اللہ ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہونی ہے، لیکن ایکچوئل اس کی امپلیمنٹیشن میں شاید ہم ویک ہیں. تو میں ایک اپنی لائف کا ریئل واقعہ سنانا چاہوں گا. جب میں سعودیہ میں تھا تو میرے ایک نیفیو کو بلڈ کینسر تھا، تو میں نے فنڈ ریزنگ بھی ان کی تو بہرحال وہ بچے نہیں وہاں، تو میں نے پھر پیسے ویسے واپس کر دیے. تو جس کسی سعودی کو میں نے بتایا کہ اس طرح وہ تو بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی، تو سب سے پہلا جو مجھے ملا اس نے کہا الحمدللہ. اس نے مجھے الحمدللہ کہا تو میں خاموش ہو گیا، میں نے اس سے تو کوئی بات نہیں کی. میں نے اپنے پاکستانی فرینڈ سے بات کی، یار یہ کیا، مجھے تو نہیں ہے اس کا پتا کیا مطلب، ہم تو ہو گئے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون، یا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بزرگ کرتے تھے کہ جی ظلم ہو گیا، یا ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی. تو میں نے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا بلیف یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں اور خاص طور پہ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے بڑے فیصلوں میں سے ہے، تو ہمیں اب یہ بلیف ہو جائے گا کہ اللہ نے جو جب فیصلہ کیا ہے جس کے متعلق کیا ہے وہ اللہ نے اپنی وزڈم سے کیا، اللہ کا فیصلہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، امپوسیبل. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ وزڈم سے کیا.
بالکل،
تو میرے خیال یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں تو شاید
ویری امپورٹنٹ. اب یہ دیکھیے یہ ہے وہ کنسٹرکشن جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر اگر ایک آدمی کے پاس بلیف نہیں ہوگا اس کی یہ کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی.
جی جی. تو دوسرا ہم سیرت النبی پڑھتے تو بہت ہیں شاید، لیکن اس سے شاید لیسنز ڈرا نہیں کرتے. اگر ہم دیکھیں کہ رسول کریم کی زندگی میں کیا کیا ٹف سچویشنز آئیں، کہ آپ کی جب برتھ ہوئی تو آپ کے فادر کی پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، آپ کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی سونر آفٹر، ٹھیک ہے، پھر آپ کے دادا نے آپ کو تربیت کی آپ کی، ان کی ڈیتھ ہو گئی سونر، پھر آپ کے چچا نے کی کسی اسٹیج پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، پھر جب شادی ہوئی شادی کے بعد ان کی جو فرسٹ وائف تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی، پھر اس دوران ان کو وہ قحط بھی آئے، ان کو دو دفعہ مائگریشن بھی کرنی پڑی، اتنی بڑی چیزیں آئیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے تین بیٹے ہوئے، دو یا تین خیر ڈسپیوٹ ہے، لیکن وہ تینوں ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا ہے. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ ابو لہب نے ان کے بیٹے کی ڈیتھ پہ خوشیاں منائیں، اور ان کو بھی یہ ان کے پڑوسی تھے تو ان کو پتہ چل رہا تھا کہ یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کس قسم کا بندے کے ذہن پہ اثر پڑے گا. اور پھر ان کی دو بیٹیوں کی ڈیتھ ہو گئی ان کی زندگی میں، اور تیسری بیٹی کا بھی ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کی انتقال کے بعد ان کی بھی فوراً ڈیتھ جلدی ہو جانی، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا بھی، امام حسین کا بھی بتا دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا. اس کے باوجود انہوں نے سب سے زیادہ پرپزفل لائف گزاری، سب سے زیادہ سکسیسفل لائف گزاری. تو یہ بھی تو ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے، کوائٹ رائٹ.
اچھا میرا چھوٹا سا کوشچن ہے، آپ نے جو ایٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک آپ نے کہا کہ شاید 99 کے 99 قرآن سے ڈرائیو نہیں ہیں، لیکن ایک روایتوں کے طور پہ لازمی آ رہے ہیں. تو بہرحال اینی وے ہم چونکہ یوز ٹو ہیں تو کر لیتے ہیں، تو اٹ مائٹ بی اے گڈ ایکسرسائز کہ ہم ان سارے 99 کو آپ کی جو میجر کلاسیفیکیشن آپ نے 5 بنائی ہیں اس میں ڈیوائڈ کریں. تو مے بی آئی ول ڈو دس ایکسرسائز ان دس
ویک. بہت اچھے ہے جی، دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا، ضرور کریں. دیکھیں میں اس کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ مذل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی. یہ قرآن مجید میں وَتُ عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُ ذِلُّ مَن تَشَاءُ یہ افعال یوز ہوئے ہیں. افعال کا مطلب ہے کہ جب کوئی آدمی یہ ڈیزرو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ اصل میں ان کی عدل ہی کی اور عدل اور وزڈم اس کے ساتھ ریلیٹ ہو رہی ہے بات. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے خدا کے ایکشنز کا قرآن میں ذکر آنا. خدا یا مثال کے طور پر قیامت کے دن یہ کہا کہ خافضت الرافعہ, وہ دن ایسا ہوگا جو بعض کو نیچے گرا دینے والا ہوگا بعض کو اٹھا دینے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ معاملہ اپنی صفات کے طور پر نہیں کرتے, یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو گرانا ان کی صفت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے عدل, اس کا اگر تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی کو دنیا بھر پوری زندگی اس کو ایک بڑا اچھا مقام مل رہا ہے لیکن آج اب عدل ہونا ہے, تو یہ ہے جس کی بات کر رہا ہوں. صفت میں اور افعال میں دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس, اس کو سمجھنا چاہیے جی.
جی جی
ٹھیک ہے جی, یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے جی. آئے میں آپ کو اس پہ انکریج کروں گا, ضرور کریں ضرور کریں. ابھی بات کرتے کرتے مجھے خیال آیا کہ مثال کے طور پر الحی کی جو صفت ہے الحی, اس کو کیا ہم الگ سے لیں یا اس کو اومنیپوٹنس کے اندر شامل کریں؟ ٹھیک ہے نا جی, دس از دیز آر دا کوسچن جو کہ انٹرسٹنگلی یہ ہمیں دیکھنے چاہیے.
جی ایگزیکٹلی, فارچونیٹلی میرے پاس ایک ہے کافی اچھی بک ہے جس میں ان ناموں کی کافی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. نارملی تو ملتے نہیں ہیں, ملتے ہیں جی آپ یہ نام پڑھتے جائیں بس بولتے جائیں
اللہ, بالکل
بڑا ایک سیڈ پارٹ ہے. تو بہرحال آئی ول کنسلٹ دیٹ بک اینڈ ٹرائی ٹو کلاسیفائی انٹو میجر کیٹیگریز.
ضرور انشاءاللہ جی. یہ جو ہے جی صفت کا اور افعال کا ڈفرینس, یہ یہاں پر فابیا کا جو کوسچن ہے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ صفت ایک صفت وہ چیز ہوتی ہے جو کنٹینیوٹی کے ساتھ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ مہربان ہیں کنٹینیوٹی کے ساتھ پائی جاتی ہے. یعنی یہ اس لیے نہیں کیونکہ تم اچھے ہو تو مہربان ہیں. ٹھیک ہے, تم جیسے بھی ہو تمہارے اوپر تو اللہ کا سورج جو ہے وہ لائف گیونگ سورج چمکے گا. ٹھیک ہے, تمہیں روٹی ملے گی, وہ اللہ کی اجازت سے مل رہی ہے لیکن اس کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے جو کہ عام ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے سزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سزا دینے والے نہیں ہیں, یہ صفت نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ اگر انسان ڈیزرو کرتا ہے تو اس کو سزا بھی دے دیتے ہیں. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو صفت ایک, صفت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کا ایٹریبیوٹ ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں, جان سکتے نہیں ہیں جانتے ہیں, یا جان لیتے نہیں ہیں جانتے ہیں. یہ ان کے اندر موجود ہے یہ صفت. اور ایک چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو بلندی اور پستی میں ڈالتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ بلندی اور پستی میں ڈالتے ہیں اپنی دوسری صفات کے تحت, آزمائش کے تحت, وہ اپنی وزڈم کے تحت. تو امید ہے کہ فبیا یہ سوال کچھ واضح ہو گیا ہوگا انشاءاللہ.
جی میں بھی اس پہ کمنٹ کرتا ہوں کہ یہ جیسے ہے پروفیسر اپنے سر ساجد صاحب ہیں المورد میں, تو سورہ فاتحہ کی جب وہ پڑھا رہے تھے ایکسپلینیٹری نوٹس, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب سورہ فاتحہ میں آتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو یہ اب ناؤ کمبینیشن آف ٹریٹس ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے لیکن مالک یوم الدین بھی ہے. تو واٹ ڈز اٹ مین؟ بڑا اچھا ایکسپلینیشن انہوں نے دی کہ رحمان اور رحیم کا ہی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرے.
بالکل,
تو جب ان کو کمبینیشن میں پڑھیں گے پھر شاید ہمیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی سمجھ آئے.
کوائٹ رائٹ, کوائٹ رائٹ, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور یہی ایک طریقہ جو ہوتا ہے نا جی اس کو ریزالو کرنے کا, یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے پیراڈاکسز جو پیدا ہوتے ہیں اس میں, یہ پیراڈاکسز عام طور پر ان صفات کے کمبینیشن سے ریزالو ہوتی ہیں.
سر آج ہی کے ٹاپک سے ریلیٹڈ بالکل کل کا ہی میرا واقعہ ہے, کہ چھوٹی سی بات ہے, بہت کوئی خاص بہت بڑا واقعہ نہیں ہے لیکن اس کو میں نے ریلیٹ جس طرح کیا وہ میں آپ سے پوچھتی ہوں. میری بیٹی جا رہی تھی یونیورسٹی تو میں نے اس کے لیے لنچ بنایا اور بہت محنت سے بنایا اور میں ہر ممکن چاہتی تھی کہ وہ ضرور کھائے. تو اس کو میں نے کہا جاتے ہوئے تم یہاں سے پک کر لینا میرے گھر سے. اس نے کہا میں نہیں پک کر سکتی. میں نے کہا میں تو تمہیں ہر حال میں کھلانا. میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اس کے ڈراپ کر کے آؤ, وہ لنچ دے کے آیا. میں نے کہا یا گھر میں اپنے کھاؤ یا راستے میں کھاؤ یا یونیورسٹی میں, تمہیں ہر حال میں کھانا ہے, یہ میں نے بنایا ہی تمہارے لیے اور پھر مجھے بتاؤ پہ کیسا بنا. اور ہوا یہ کہ بیچ میں اس کو اس کی دانت میں درد کوئی ہو گیا اور اس کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑا اور اس کی دانت میں فلنگ ہو گئی اور وہ اس نے لنچ کسی اور کو دے دیا. تو میں ہی سوچ رہی تھی, میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ذرہ بھی وہ نہیں چکھ سکی, میں نے کہا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو تک نہیں پہنچانا تھا, وہ اس کے نصیب میں نہیں تھا, جس کے تھا اس تک پہنچ گیا, جس کو میں دینا چاہ رہی تھی اس تک نہیں پہنچ سکا.
بالکل ٹھیک ہے, that is very important. اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, اصل میں وہ ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم ڈیٹرمن تو نہیں کر سکتے ایگزیکٹلی کیا وجہ تھی, اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم زیادہ بھوکے تھے, ناٹ دیٹ وے. یعنی اب آپ نے جو کنسٹرکشن بنانی ہے اس کو اپنے لیے پلیجریبلی ایکسیپٹیبل بنانا ہے, ٹھیک ہے جی. اگر وہ اس بلیف سے نکل رہی ہے, اس فیتھ سے نکل رہی ہے کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے, تو پھر یہ دس ول ایکچولی ہیلپ ان کریٹنگ دیٹ. بہت شکریہ آپ کے تجربات کو شیئر کرنے کا. جی میرا خیال ہے وہ جس طرح فرما رہی تھی کٹ گئی ہیں.
میرا سوال لاسٹ سیشن سے ہے, جس پچھلی والی کلاس سے ہے, جس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی برا کر رہا ہے تو بھی ہمیں اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے, اپنے اصولوں پر ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو سر یہ اس کی کوئی ٹپس بتائیں کہ کوئی برا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم کیسے کام پیس رہ سکتے ہیں, اپنی نفس کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں, اور سیکنڈلی یہ کہ اپنے باطن میں ہم کیسے جھانک سکتے ہیں, اپنی آواز ضمیر کی آواز کو کیسے سن سکتے ہیں.
یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جی, ایک تو یہ کہ ضمیر کی آواز کو کیسے سن سکتے ہیں, اور ایک اور چیز یہ کہ ہم اپنے تھاٹ پروسیسز اور اپنی فیلنگ سے کیسے زیادہ کانشیس ہو سکتے ہیں. اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا اور انتظار کر لیجئے, انشاءاللہ یہ آگے ٹاپکس آئیں گے جی, اینڈ وی ول بی ٹیکنگ دیم اپ. اور جو پہلی بات آپ نے فرمائی ہے کہ جب کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو ہم اس میں کیسے کام اور پیسفل رہ سکتے ہیں, یعنی یہ میری آپ موجود تھیں جو آج کا ہمارا سیشن تھا اس کے شروع میں, جو میں نے ایک آخری سوال کیا ہے کہ آپ کی کنسٹرکشن آف ریالٹی کیا ہے. اس کو اس پہلو سے آپ کوشش کیجئے اس پہلو سے جواب دینے کی اپنے, یعنی آپ سوال یہ ہے کہ یہ خدا ہے جس کو میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے جی, یہ مانتی ہوں, اور میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے, ٹھیک ہے. ناؤ ہاؤ وڈ یو کنسٹرکٹ اٹ ان یور مائنڈ سو دیٹ آپ کام اور کول رہ سکیں. یعنی یہ تو اس کا نتیجہ ہوگا, اگر آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ, اگرچہ یہ کسی کے ذریعے سے ہو رہا ہے, کسی کی اللہ تعالیٰ دوسرے کی بھی تو آزمائش کر رہا ہے, صرف میری نہیں کر رہا, وہ اس کی آزمائش کے نتیجے میں میرے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کے نتیجے میں اب میں کس طرح کنسٹرکٹ کروں اس کو کہ اس کے نتیجے میں کام رہوں. یہ ہمارا اگلے سیشن کا ٹاپک ہوگا جی انشاءاللہ. میری آپ سے اس کے بارے میں بھی یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ برا نہ لگے تو اس کو بھی اگلے سیشن کے اینڈ پر رکھ لیں, اگر کوئی چیز رہ جائے جواب طلب تو ضرور دوں گا جی انشاءاللہ.